also this appearance day of our Gurudev. In morning, Bhakti Vaibhav Puri Maharaj, Bhasi Maharaj, Paramadvaiti Maharaj, there are so many qualified persons. They will give their Pushpanjali in the lotus feet of our Gurudev. So, we will tell first. Shyamrani can come and speak something. She can stand up here.
কোন সাথী কথা বলতে পারে
I'm telling something from Vahe to last date in and usko sankshep mein batla raha hu main batla raha hu aur ye piche se batlayenge hamare guru ji ki do paramparaye hain ek गुरु परंपरा और दूसरी वंश परंपरा. गुरु जी के दोनों ही बहुत उज्ज्वल और उन्नत हैं. पहले वंश परंपरा में वैष्णव का वंश परंपरा का कोई महत्व नहीं. किसी भी वंश में कैसे भी वो आ सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो. हिंदुओं में भी शूद्र भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं. यही कृष्ण तत्त्ववेत्ता से ही गुरु है. इसलिए गुरु जी का वंश परंपरा की कोई महत्ता नहीं रहने पर भी हम उसको संक्षेप में कुछ बतला रहे हैं. गुरु जी बहुत उन्नत वंश में पैदा हुए थे. इनके पिताजी, इनके पितामह, इनके मामा और मातामह सभी उच्च वंश के परिवार के थे और वैष्णव थे. गुरु जी के पिताजी के पिताजी उस समय के बंगाल भर में प्रसिद्ध एक संत के शिष्य थे, जिनका नाम विजय कृष्ण गोस्वामी था. वो इतने सिद्ध महात्मा थे, पहले योगी थे, पीछे से चैतन्य महाप्रभु के मंत्र इसमें दीक्षित हुए थे संप्रदाय में. वो इतने सिद्ध महात्मा थे कि एक समय में ढाका के पास बरिशाल में वो बैठे थे. उनके गुरुजी, उनके पिताजी के गुरुजी, क्या नाम बतलाया, विजय कृष्ण गोस्वामी. उन्होंने हठात कहा, देखो देखो विद्यासागर जी जा रहे हैं, ये स्वर्ग में जा रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और देवता लोग पुष्प उन पर बरसा रहे हैं. तो उनके शिष्यों ने उसी समय में मेदिनीपुर में टेलीग्राम किया. मेदिनीपुर में उनका देहांत हुआ था. मेदिनीपुर में थे, वो बहुत विद्वान थे, संस्कृत के भारतवर्ष में उस समय के सबसे बड़े विद्वान थे और बड़े समाज सेवक थे. पुण्य कर्म करते थे, सत्कर्म करते थे, सत्कर्मी जिसको कहते हैं वो थे. उन्होंने टेलीग्राम किया तो कहा कि ठीक उसी समय में जिसमें उन्होंने कहा था उसी समय उन्होंने सेट तैयार किया था. तो महापुरुष लोग इन सब चीजों को जान लेते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन कब मर गया या क्या हुआ, जो अच्छे अच्छे लोग हैं. तो उनके कहने से पता लगा कि ठीक उसी समय में हो गए. ये महाप्रभु जी के धर्म में आकृष्ट होकर के पीछे से जोग जोगड़ा सब कुछ छोड़ करके और इसमें प्रविष्ट हुए थे, वैष्णव बने थे। उन्हीं के शिष्य हमारे गुरु जी के पिताजी थे, जिनका नाम याद है? याद नहीं है। तो उनके पिताजी उनके शिष्य थे और माता जी उन्हीं के शिष्या थी, इसलिए वैष्णव परिवार के थे। जिस समय उनका जन्म हुआ बड़े ही सुंदर थे, शरत चंद्र गुह ठाकुर था और माता जी का नाम भुवन मोहिनी। जिस समय पैदा हुए बड़े ही सुंदर, ऐसे कि जैसे जोनाकी पोका होता है, जुगनू होती है, ऐसे उनसे तेज निकलता था, इसलिए उनका नाम जोना रख दिया गया। जोना माने ज्योत्सना, भी चंद्र की जैसे ज्योत्सना होती है, ऐसे बड़े सुंदर सुकांत के रूप में वो पैदा हुए। हाँ बोल दीजिए। इनकी इनका स्वभाव अपने मैया के ऊपर में आया। मैया एक जमींदार फैमिली की लड़की थी, बहुत ही अच्छी शासक थी। इनके चार लड़के थे। बड़े लड़के श्रील प्रभुपाद के सन्यासी शिष्य दीक्षित और सन्यासी शिष्य प्रमोद कुमार जी, और पीछे से उनका नाम हुआ भक्ति केवल औरलोमी महाराज। बहुत ही विद्वान आदमी और वैष्णव लोग। इनके भाषण बड़े सुंदर होते थे, युक्तिपूर्ण होते थे। और दूसरे नंबर पर ये थे, इनको लोग भीम कहते थे और बड़े दयालु स्वभाव के थे। अपने पिताजी की अंगुली पकड़ करके जहाँ पर धर्म सभाएं होती, जहाँ पर गीता पाठ होता, भागवत का पाठ होता, वहां पर बचपन से जाया करते। उनका स्वाभाविक ये रुचि था। इनकी मैया शासक थी, रूलर थी, बड़ी कठोर थी। कोई भी बच्चे बिगड़ न जाए इसका अपने आप वो सबको कंट्रोल में कर रखती थी और सबको अच्छी तरह से पढ़वाती थी। पढ़ी लिखी भी विदुषी महिला थी। एक दिन जबकि ये स्कूल में पढ़ने लगे, एक दिन ये बहुत रात से लौटे अपने घर में। मैया लठिया लेकर के खड़ी थी शाम से। रात क्यों किया? गंदे लड़कों के साथ में घूमेगा, इसकी बुद्धि खराब हो जाएगी, इसलिए लठिया लेकर के दरवाजे पर खड़ी थी। आएगा तो उसे हम पीटेंगे और पूछेंगे ये कहाँ था। जब ये लौट करके आए करीब करीब 10 बजे रात में, 10 बजे तक खड़ी रही, कुछ न खाया न पिया। 10 बजे आए तो उनका हाथ पकड़ लिया, कहाँ था, कहाँ था तुम बतलाओ। ये बतला नहीं रहे थे, चुपचाप खड़े रहे। तुम बतलाएगा ना तभी पीटेंगे, बतलाओ तुम कहाँ था। उन्होंने कहा मैया देख, हम लोगों ने एक कमेटी बनाया है और हम लोगों के आसपास के गांव में या अपने गांव में जो दुखी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, दरिद्र हैं, रोगी होते हैं, हम लोग जो तुम लोग खाने के लिए पैसे हमें देती है, जल खाने के लिए हम लोग टिफिन के पैसे एकत्र करके रखते हैं, अपने कुछ नहीं खाते हैं और उसे गरीबों की, दिन दुखियों की सहायता करते हैं। अभी हाल में गांव में एक बुढ़िया महिला है, उसके पति नहीं है, लड़का नहीं है, उसको घर नहीं है, कुछ नहीं, खाने के लिए भी कुछ नहीं, और उसको कलरा हो गया और बहुत बीमार है, मरने हो गई, कोई देखने वाला नहीं था। मैं उसके घर में गया और देखा कि खाने के लिए नहीं है और मर छटपटा रही है, पानी देने के लिए कोई नहीं है। मैं साथ ही साथ में डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आया, उसके लिए पैसे की व्यवस्था की, औषधि की व्यवस्था की, पथ्य की व्यवस्था की और अपने साथियों को इसके बाद में लगा करके एक दूसरे साथी को बैठा दिया है, वो वहाँ पर है और मैं अभी घर में आया और थोड़ी देर के बाद में मुझे फिर जाना पड़ेगा उस साथी को छुड़ाने के लिए, जो फिर मैं जाकर के रात में जग करके उसकी सेवा करूँगा। मैया के हाथ से लठिया गिर पड़ी, आँख के आंसू छल छलाए, हमारा बेटा इतना दयालु, मैं इतनी कठोर स्वभाव की और उसको उन्होंने आलिंगन कर लिया। ऐसे दयालु प्रारंभ के जीवन के प्रारंभ से ही थे। दयालु किसको कहते हैं? जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सारे। दया किसको कहते हैं? किसी को एक कपड़ा देना नहीं, कपड़ा देना दयालुता नहीं है। उन्होंने उसको रोगी की सेवा की, वो तो मर जाएगी। किस हृदय में दया होनी चाहिए। वैष्णव लोग बड़े दयालु होते हैं, लौकिक रूप में भी पारलौकिक रूप में भी। अभी की जो दया है काम में नहीं आती, फिर जिसको देते हैं वो आपका शत्रु भी हो सकता है और उस फिर दरिद्र हो जाएगा, फिर मरेगा एक दिन। किंतु परमार्थिक दया क्या है? जिस दया के करने के बाद में फिर किसी दया की जरूरत नहीं होती। अमन दो उदया दया, उसका मंद नहीं हो सकता है, उसका खराब कोई नहीं होगा। अभी मान लेके किसी की लड़की की आपने शादी करा दी, कुछ दिनों के बाद में आपका शत्रु हो सकता है। अभी जो शत्रु है वो शत्रु मित्र हो सकता है इस दया का। और फिर वो भूखा मर रहा है, कुछ दे दो, फिर कुछ दिनों के बाद में फिर वो मांगेगा। किंतु जिसको परमार्थिक दया करो, जो तुम कृष्ण का दास है, एक भी जीव को जो संसार में लगा उसकी एक रुचि को परिवर्तन करके भगवान में लगा दिया जाए, उसका जन्म जन्म जन्मतर उसका मंगल होगा, कल्याण हो जाएगा। इसे बढ़कर के कोई दया नहीं। एक भी जीव को यदि आपने किसी प्रकार से उसकी भावना को मोड़ करके भगवान की तरफ में लगा दिया, इसे बढ़कर के संसार विश्व में कोई दया नहीं है। वो फिर जन्म मरण से सदा के लिए बाहर होकर के कृष्ण की चरणों में गोलोक वृंदावन में जाएगा। किंतु ये संसारिक दयाओं का ऐसा ही फल होता है। एक मृग राजा को जानते हैं, उन्होंने करोड़ों करोड़ों गाय दान की, किंतु फल क्या हुआ? किसी ब्राह्मण को संतुष्ट नहीं कर सके और अंत में उनको गिरगिट होकर के आना पड़ा। यही तो दान का फल है। इसलिए हमारे गुरु जी पीछे से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के यहाँ आए और असल दया कहते हैं कि इसको इन्होंने बतलाया। और तब भगवत कथा के प्रचार में और गुरु की सेवा में वैष्णव की सेवा में अपना सारा जीवन लगाए। अब बोलिए। तचीकने पात, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनके लंबे लंबे अच्छे अच्छे हरे भरे पत्ते हों तो समझो ये बहुत अच्छा पेड़ होगा और फलदार होगा। ऐसे ही जीवन में पहले उसको देख करके ये बात कोई समझ सकता है कि ये जीवन में बहुत ही उन्नत व्यक्ति होगा और बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। इनके जीवन ऐसा ही, जीवन में कभी भी स्वार्थ नहीं इनके जीवन में देखा गया। संतों के जीवन में निस्वार्थ भावना रहती है, पहली तो ये निशानी है। यदि किसी वर्ल्डली चीज में उनका अटैचमेंट हो तो वो संत नहीं हो सकता। तो देखा जाता है इनके जीवन में बचपन के प्रारंभ से ही अपने लिए कुछ उन्होंने किया नहीं। यहाँ तक में मठ में आए, इनके पास में कभी एक पैसा नहीं रखा, जो कुछ हुआ सब प्रभुपाद की सेवा के लिए लगा दिया। प्रभुपाद जी अपना सारा वेदांत ग्रंथ इनको दिया था। उनको कहते थे तुम डोकला है, डोकला माने मूर्ख, मूर्ख माने इस रूप में नहीं, अपने लिए कुछ करता नहीं। संत लोग अपना आप कुछ है ही नहीं है, भक्तों के लिए सर्वस्व करते हैं, हरि गुरु वैष्णव की सेवा के लिए। इसलिए उनके जीवन के प्रारंभ से ही उसमें ऐसा कोई स्वार्थ ही नहीं देखा गया जो अपने लिए कुछ रखे। प्रभुपाद जी के अप्रकट होने पर जितने सन्यासी थे 2-10 लाख रुपया कलेक्शन करके बड़े बड़े मठ बनाए, किंतु हमारे गुरु जी प्रभुपाद जी के अप्रकट होने पर एक पैसा नहीं था, खाली हाथ आए। आज देखो जैसे आज भारतवर्ष में क्या विदेशों तक में सर्वत्र उनके बड़े बड़े मठ और ये सब हो रहे हैं और कितने शिष्य इत्यादि हैं। तो हम लोग भी वैसा निस्वार्थ रूप में हरि गुरु वैष्णव की सेवा करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे, तो ऐसा ही होगा। भगवान की बड़ी कृपा है, अकिंचन दीनहीन अकिंचन के ऊपर में भगवान की कृपा होती है। यदि अकिंचन नहीं रहेगा, प्रहलाद महाराज जी ने कहा कि निष्किंचनश्च, उनके चरणों की धूलि से यदि अभिषिक्त नहीं हो गए तब तक हरि भजन नहीं होगा। इसलिए निष्किंचन होना चाहिए। गुरु जी महाराज अंत तक निष्किंचन रहे, जब अप्रकट हो गए उनके पास में एक पैसा हम लोगों ने नहीं पाया, कुछ भी उनके पास में नहीं, सब कुछ ऐसे ही। हम लोगों ने भिक्षा से इधर उधर से उनका विरह उत्सव इत्यादि सब कुछ मनाया, एक पैसा भी नहीं। एक बात हमने ये जो कुछ बातें सुनी है गुरु जी के मुख से सुनी है। मैं उनका बड़ा मुंह लग्गू था, मुंह लग्गू समझते हैं, मुंह लग्गू मैंने डरता फरता नहीं, उनसे सब समय प्रश्न किया करता और सारी उनकी सेवाएं कपड़े धोने से लेकर रसोई बनाना लेकर के सभी सेवा मैं करता था उस समय उनकी। यहाँ तक कि बहुत सी सेवाएं जो मैं नहीं अपने मुख से कहना चाहता, मैं भी मृत्यु से डरा नहीं उनकी सेवा के लिए, उनके सेवकों के लिए। तो वो उनके जीवन में हमने बहुत से कुछ जो कुछ वो पहले का था वो मैंने उनके मुख से सुना। दौलतपुर कॉलेज में पहले वो कलकत्ते के उत्तर पाड़ा कॉलेज में वो भर्ती थे उस समय में। अभी तक गुरुजी से अपने नहीं मिले थे। वहां पर उनकी एक पीसी माँ थी, माने बुआ जी थी, उनका नाम सरोज वासिनी था ना। बहुत ही उन्नत श्रेणी की विदुषी महिला थी, बहुत तत्वज्ञ, और सब सन्यासी लोग उनको प्रणाम करते थे। महिला होने पर भी सब महिला लोग उनको प्रणाम करते थे, दीदी दीदी कहा करते थे। और बहुत विद्वान, समस्त सिद्धांतों को जानने वाली, और कैसी थी, कवि थी। क्षण मात्र में सारी कविताएं नई नई बनाती थी। प्रभुपाद के जीवन में, हमारे गुरु जी के संबंध में, यहाँ तक कि बामन महाराज जी के संबंध में, हम लोगों के संबंध में कविताएं सब बना करके साथ ही साथ में वो बना देती थी। कहा भाई, तो वो सरोज पीसी माने प्रभुपाद के संबंध में बहुत कुछ बतलाया, और उनको अपने साथ लेकर के प्रभुपाद जी के साथ में पास में मायापुर में ले आए।
वो प्रभुपाद जी की शिष्या थी,
प्रभुपाद जी की शिष्या थी, पहली शिष्या थी। प्रभुपाद महिलाओं को मंत्र नहीं देते थे, उनको दीक्षा नहीं देते थे। तो वे एक बार वो आई, उन्होंने कहा स्त्रियों में क्या स्त्रियां क्या जीव नहीं है, किस दोष से उनको दीक्षा आप नहीं देते हैं, किस क्यों, क्या उनका कल्याण नहीं होना है। तो उनकी बातों को सुनकर के क्या उनको भजन करने का अधिकार नहीं है, क्या उनको भजन करने का स्त्रियों का अधिकार नहीं है। प्रभुपाद इसका उत्तर नहीं दे सके और बड़े प्रसन्न होकर के सबसे पहली बार उनको शिष्य के रूप में ग्रहण किया था। प्रभुपाद जी को, हमारे गुरु जी को वही लेकर के आई। गुरु जी उनको बहुत आदर करते थे, उनकी प्रत्येक बात को मानते थे। गुरु जी से इनके भेंट होने पर गुरु जी प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए। यह बात 1916 की। इसके बाद में बीच बीच में आने लग गए। हरिनाम उन्होंने 1916 में लिया, और इसके बाद में कॉलेज में पढ़ते थे उत्तर कॉलेज कलकत्ते में। उसी समय में बड़े बड़े अपने प्रिंसिपल से और बड़े बड़े प्रोफेसर से बात होती थी उनकी। उस समय में एमए में बीए में चैतन्य चरितामृत था, गवर्नमेंट के द्वारा ये क्या कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड था। चैतन्य चरितामृत सिलेबस में था, उसका पहला पार्ट आदिखंड था बीए में और बाकी था एमए में। तो उसमें पहले खंड में जब ये पढ़ते थे तो उसमें है बदंति तत्व विदस्त तत्त्वम जद ज्ञानम अद्वयम। अद्वैत ज्ञान का किसको कहते हैं, और दूसरा जीवर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्ण न तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकार। वो लोग इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सके जब भेदा भेद प्रकाश क्या है और जीव का स्वरूप क्या है, उसी तरह से नहीं बतला। गुरु जी से पूछा तो गुरु जी ने उनको स्पष्ट करके बतलाया प्रभुपाद जी का विचार। अद्वैत ज्ञान किसको कहते हैं? अभी हम बतलाएंगे तो बहुत से लोग पूछेंगे तो कोई बतला भी नहीं सकता। अद्वैत ज्ञान कौन है? कृष्ण ही अद्वैत ज्ञान पर सकते हैं। अकेले हैं, किंतु अकेले में कैसा, बहुत तो लेकर के एकत्व है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी। कृष्ण कहने से जीव जगत उनके परिकर इत्यादि सब कुछ मालूम होता है, सब मिलाकर के भ ग वा न। भ अपने विश्व ब्रह्मांड के भर्ता पाल, यदि ब्रह्मांड नहीं रहे तब भर्ता किसके रहेंगे? और केवल यही जगत नहीं, गोलोक वृंदावन बैकुंठ इत्यादि सब सबके ये भर्ता हैं, भरण पोषण करने वाले हैं। और गौ माने उनके नियामक हैं, नियामक माने संचालक, विश्व सारे इस विश्व का उस विश्व का तटस्थ शक्ति के से उत्पन्न ये सब का वो मूल संचालक हैं। वह अखिल प्राणी में जो निवास करते हैं, अखिल प्राणी जिनमें निवास करते हैं वो भगवत शब्द वाच्य है। कृष्ण की शक्ति है, विशेष करके तीन शक्तियां, चित्त शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। चित्त शक्ति से सारा वैकुंठ जगत प्रकट हुआ है, नंद जसोदा वृंदावन के सारे परिकर उनसे प्रकट हुए हैं। और तटस्था शक्ति से हम जैसे जीव, और ये माया शक्ति से सारे विश्व ब्रह्मांड, एक ही नहीं लाखों कोटि विश्व ब्रह्मांड प्रकट हुए हैं। ये सब मिलाकर के भगवत शब्द वाच्य है, इन सबको मिलाकर के कृष्ण एक हैं, ये जगत वही एकमात्र अद्वितीय परतत्व है अद्वैत ज्ञान। उनकी शक्ति से सारे विश्व हुए हैं, उनकी शक्ति से सारे वैकुंठ जगत की सारी चीजें हुई हैं, और अंत में उन्हीं से ये सारा विश्व ब्रह्मांड उठे, इसलिए कृष्ण ही परतत्व है। इसको सुनकर के आश्चर्य चकित लोग हो गए, तटस्था शक्ति क्या है? कोई धारणा उनकी नहीं थी, गुरु जी ने उनको बतलाया। इस तरह से जब जब कुछ चैतन्य चेतामृत के कुछ कठिन सिद्धांत आते थे तो वो लोग कभी भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, गुरु महाराज जी उनको बतलाते। गुरु जी ने सोचा इनके पास में हम रह करके क्या सीखेंगे, जब प्रिंसिपल को और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसके वो जो पढ़ते थे, जब उन लोगों को मैं ही पढ़ाता हूं तो उनसे क्या बात होगी पढ़ करके, उनसे हमारा कुछ लाभ नहीं है, इस जड़ विद्या के सीखने से कुछ भी लाभ नहीं है। जड़ विद्या जतो माया और वैभव जीवो के करे एक गाधा, ये जड़ विद्या का कुछ भी मूल्य नहीं है, वो क्या करती है, जीव को गधा बना देती है। श्री कृष्ण के भजन में ये जड़ विद्याएं बाधा होती हैं, इसलिए जड़ विद्या के ऊपर में निर्भर नहीं रहना चाहिए। परमार्थिक विद्या जो अक्षर तत्व है, ब्रह्म तत्व, भगवत तत्व, भक्ति तत्व, इस पर निर्भर रहने की जरूरत। हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर कौन से कॉलेज में गए, कौन से कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में नहीं गए। श्रीनिवास आचार्य कौन से कॉलेज में गए, हमारे गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज कख कख निकला नहीं जानते थे, और बड़े बड़े विद्वान प्रभुपाद जैसे विश्वविजयी व्यक्ति उनके चरणों में नतमस्तक हुए। ये कौन सी विद्या है, यही परमार्थ की विद्या है। यदि कृष्ण भक्ति है तो सभी कुछ विद्याएं हैं, और कृष्ण भक्ति नहीं है तो कोई भी विद्या नहीं है, ऐसा सोच करके उन्होंने कॉलेज में जाना बंद कर दिया और संपूर्ण रूप से 1919 ईस्वी में प्रभुपाद के चरणों में अपने को आत्मविकृत कर दिया। प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए। बोल दीजिए। एक समय की बात है, गुरु जी मायापुर में प्रभुपाद जी के पास में थे, उनकी मैया ने एक पत्र लिखा और वो पत्र प्रभुपाद जी के नाम से था, प्रभुपाद जी के पास में पत्र लिखा। प्रभुपाद जी ने पत्र पढ़ने के बाद में विनोद बिहारी ब्रह्मचारी को अपने पास में बुलाया और उनसे बोले, देखो तुम्हारी मैया का ये पत्र आया है, तुम्हारे विरह में वो मर रही है और उसका अंतिम पत्र है, वो तुमको एक बार देख लेना चाहती है, सब समय विनोद विनोद करती है, कहते कहते अब मरने वाली है, इसलिए एक बार हमसे प्रार्थना किया है कि मैं उनको भेजूं और वो घर में मैया के पास में एक बार भेज करके चला गया। उन्होंने विनोद को बुलाया और कहा तुम्हारी मैया का पत्र आया है, तुम घर में जाओ और मैया से भेंट करके चले आओ और वो भी बहुत बीमार है, आज ही चले जाओ। उन्होंने गुरु जी को अपने पास से किराया का पैसा दिया और हमारे गुरु जी वहां से चले आए। जब शाम हो गई तो प्रभुपाद जी ने दूसरों से पूछा, अरे विनोद को मैंने कहा था अपनी मैया को पास में जाने के लिए, वो गया कि नहीं देखा हो तो? खोजते खोजते उन्होंने देखा एक कोने में बैठ करके हरिनाम कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पता लगा कर उनके पास। प्रभुपाद जी ने उनको बुलवाया, अरे तुमको मैंने कहा कि अपनी बूढ़ी मैया और मर रही है, विनोद विनोद कर रही है, तुम जाओ एक बार भेंट कराओ, तुम क्यों नहीं गया? तो कुछ नहीं बोल रहे। दो तीन बार पूछने पर बतलाया कि गुरु जी कोटि कोटि जन्मों के बाद में आप जैसे गुरु मिले हैं और मैं समझता हूं कि आपके मिलने से हमारा जीवन सफल हो रहा है, मैं कुछ भगवत तत्व समझ रहा हूं और भजन करने की चेष्टा कर रहा हूं, आज मैं लौट करके मैया के पास में जाऊं और मैया यदि कह गई कि बेटा अब मैं मर रही हूं, अब तुम्हें एक बात करना, हमारी अंतिम अभिलाषा है कि तुम घर में रहकर विवाह शादी करके के घर देखो, नहीं तो घर हमारा बर्बाद हो जाएगा, मैं अंतिम यही अभिलाषा है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसकी अंतिम अभिलाषा पूरा करने के लिए घर में विवाह शादी करके अपना सारा जीवन अनंत जीवन में बर्बाद कर दूंगा, आप यदि कहिए तो आप मैं जाऊं। प्रभुपाद जी के आंखों में आंसू आ गए, कहे यही जीवन की सफलता है, बड़े प्रसन्न हुए। माता पिता जन्मे जन्मे सबे पार, गुरु कृष्ण नहीं मिले भजन, अरे माता पिता तो सबके मिलते हैं किंतु गुरु बहुत सौभाग्य से मिलते हैं और कृष्ण बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। यदि माता पिता की सेवा तो संसार में करने वाले श्रवण कुमार इत्यादि बहुत हुए, उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, उनका जीवन सार्थक नहीं। यदि गुरु की सेवा करे और गुरु के बाद संसार में कृष्ण का भजन करे, उसका जीवन सदा के लिए ही सफल हो जाएगा, भगवान की सेवा मिलकर के संसारिक पचनों से उठ करके कृष्ण प्रेम को पा सकता है, अन्यथा नहीं। तो प्रभुपाद उनके विचारों को सुनकर के बड़े प्रभावित हुए और नहीं गए। हम देखते हैं बहुत से लोग मठ में आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, ऊपरी विचारों को थोड़ा सा सीख लेते हैं और सोचते कि हमारा जीवन कमाने के लिए सब ठीक हो गया, न गुरु जी के प्रति न श्रद्धा न कुछ, कुछ दिनों के बाद में पुनर्मुसी को भव, वैसे उनकी दुर्गति हो जाती है, संसार में चले जाते हैं। खूब निष्ठा के साथ में यदि कोई गुरु सेवा करे, उनके वचनों को मान करके कृष्ण भजन यदि करे और जैसे हमारे गुरु जी दिन रात परिश्रम करके जप करके गुरु जी की सेवा करते थे, वैसा यदि कोई करे तो ऐसे ही भगवत भक्त होकर के संसार से सदा के लिए चला जाएगा। इसलिए माता पिता का स्नेह, स्त्री की ममता, उनके प्रति प्रीति ये संसार में डुबाएगी। राजा मोरे स्नेह करे ए मोर बंधन, राजा मोरे प्रीति करे ए मोर बंधन, पिता मोरे प्रीति करे ए मोर बंधन, भाई मोरे प्रीति करे ए मोर बंधन। जो संसारिक लोग जो हमें प्रीति करते हैं वो हमें बांधते हैं, बल्कि वो ठीक है जो घर वाले शत्रुता करें तो जल्दी से घर से निकल करके भगवान का भजन करें। ये बहुत से लोगों को ये दिमाग में ये चीज नहीं आएगी, किंतु बात यही है, हम भगवान के ही पुत्र हैं, भगवान की संतान है, भगवान के हम सेवक हैं, इनके नहीं। वो तो माया के वजह से ऐसा हो रहा है और तुम चाहो ना चाहो ये छोड़ना पड़ेगा, इसलिए गुरु जी के लाइन में ही आना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा। बतलाइए डिवोटी, बहुत से लोग ब्रह्मचारी अभी विवाह शादी नहीं किया है मेरे पास में आते हैं और तो कहते महाराज जी आप आदेश दीजिए मैं विवाह कर लूं। विवाह के लिए बड़े उत्सुक। अच्छा विवाह करने से भक्ति होगी? यदि तुम यहां हमारे पास नहीं आने के पहले शादी कर लेते कोई बात नहीं थी, अब यहाँ आकर के भगवत भक्ति के विचारों को सुन करके अब फिर तुम विवाह करना चाहता है, विवाह से तुम्हारी भक्ति होगी न एनर्जी उसमें नष्ट होकर के तुम संसार में जाकर के डूबेगा और मरेगा। इस चीज को नहीं समझते, इस चीज को वेस्टर्न डिवोटी इस चीज को अच्छी तरह से समझे। विवाह करने से यदि भगवान मिलते तो मैं तो 100,000 विवाह कर लूं, अभी मिलेंगे भगवान। इफ शास्त्र हैज टोल्ड, अवर गुरुदेव हैज टोल्ड दैट बाई इफ यू डू यू मैरी हैव ए मैरिज देन यू हैव श्योरली हैव भक्ति देन आई विल डू लैक्स एंड लैक्स मैरिजेस बट आई नो, मैं जानता हूं तुझे भक्ति नहीं होती। फिर जान बूझ करके समझ बूझ करके लोग क्यों नहीं समझते इस चीज को, जानने के पहले तुम शादी नहीं किया है या कर लिया वो दूसरी बात, किंतु सदगुरु के पास में जा करके और इसको समझ करके और अपनी एनर्जी संसार में देना फिर विवाह करना, ये कहां तक होती है। मैं कहता हूं कि जिसको इच्छा है वो करे, क्योंकि उस कहने से भी नहीं मानेंगे, उनका अधिकारी नहीं है। किंतु मैं ये कहना चाहता हूं भाई, पहले जो कुछ कर लिया है कर लिया है, किंतु अब गुरु धारण करने के बाद इसको समझो, विवाह करने से भक्ति नहीं होगी। इस चीज को समझो, तुम्हारी एनर्जी उसमें जाएगी। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी ब्रह्मचारी थे, प्रभुपाद जी ब्रह्मचारी थे, गौर कृष्णदास ये सभी सब लोग ब्रह्मचारी थे, आजीवन ब्रह्मचर्य। इसके बाद में जिन्होंने पहले इस चीज को नहीं समझा था, उस तरह से हमारे बहुत से भक्त लोग महाप्रभु के समय में भी शादी किए थे। इसलिए ये बुरा तो नहीं है शादी कर लिया, किंतु समझने बूझने के बाद में अब फिर शादी करे ब्रह्मचारी 50 वर्ष या 20 वर्ष रहने के बाद 10 वर्ष के रहने के बाद में, ये उचित मैं नहीं समझता। यदि हम अपने को कल तोड़ नहीं करेंगे तो भजन कैसे होगा। इसलिए इस विषय पर खूब गहरा विचार होना चाहिए। गुरु जी बड़े दयालु थे, बहुत दयालु, एक बार प्रभुपाद जी ने एक व्यक्ति को कहा, गुरु जी को कहा कि इसको मठ से बाहर कर दो। वो सब समय वैष्णव की निंदा करता था,